بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انگراہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ آج شکروار ہے، فروردین کی 18، رمضان کی 16 اور اپریل کی 7 تاریخ۔ شوتاؤ، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارے آج کے کاریکرم کے روپریکھا نوٹ کر لیں۔ صدا کی بھانتی آپ سب سے پہلے دیش ودیش کے سماچار سنیں گے، اس کے پشچات راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم ہوگا، اس کے پشچات رمضان کے سمبندھ میں آپ ہمارا وشیش کاریکرم سنیں گے، اور سبھا کا انتم اور آپ کا من پسند کاریکرم ہوگا پتر سنسار۔ شوتاؤ، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی نے کہا ہے کہ فلسطینی راشٹر کا سمرتھن ایران کی اپریورتنیہ نیتی ہے۔ ایران نے زانوی شاسن کے حملوں کے تیور بھرتسنا کی ہے۔ جارڈن کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ اسرائیل چھیتر کو تباہی کی اور لے جا رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ ناٹو کا مقابلہ کرے گا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی رئیسی نے کہا ہے کہ فلسطینی راشٹر کے ادھیکاروں کا سمرتھن ایران کی اپریورتنی نیتی ہے۔ سید محمد ابراہیم رئیسی نے کہا کہ زانوی شاسن کے اتیاچاروں کا مقابلہ اور فلسطینی راشٹر کے ادھیکاروں کی رکشا کرنا ایران کی ایسی نیتی ہے جس میں پریورتن نہیں ہوگا۔ ایران کے راشٹرپتی نے یہ بات انڈونیشیا کے راشٹرپتی کے ساتھ ٹیلی فونی وارتا میں کہی۔ ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ فلسطین اسلامی جگت کے دھڑکتے ہوئے دل کی بھانتی ہے۔ ایران کے راشٹرپتی کے انوسار ویشوک سمیکرنوں میں ایک پربھاوی بلاک کے روپ میں اسلامی جگت کو ادھک سہیوگ کی ضرورت ہے۔ اسی آدھار پر اسلامی دیشوں کے سمبندھوں میں مضبوطی لانے کی ہر پہل کا ایران سواگت کرتا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے تیران اور جکارتا کے 70 ورش پرانے سمبندھوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے دونوں دیشوں کے بیچ آرتھک اور ویاپارک سمبندھوں کو ادھک مضبوط کرنے پر بل دیا۔ مسجد الاقصی میں زانوی شاسن دوارا کی گئی ہنسک کاروائیوں کے درشٹگت ایران نے او آئی سی کی آپاتکالین بیٹھک کی مانگ کی۔ حسین امیر عبداللہ نے گروار کی شام او آئی سی کے مہا سچیو سے ٹیلی فونی وارتا کی۔ اس وارتا میں انہوں نے حسین ابراہیم تہا سے زانوی سینکوں دوارا مسجد الاقصی میں کی گئی ہنسک کاروائی کے بارے میں بات چیت کی۔ उन्होंने कहा कि इस बारे में OIC के विदेश मंत्रियों के स्तर की आपातकालीन बैठक आहूत की जाए। ईरान के विदेश मंत्री का कहना था कि इस बैठक के आयोजन में इस्लामी गणतंत्र ईरान से जो कुछ भी हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बारे में ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा, इस संदर्भ में कुछ सुझाव भी हैं। ईरान के विदेश मंत्री के साथ होने वाली टेलीफोनी वार्ता में OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने मस्जिद अक्सा में जानवी शासन द्वारा की गई हिंसक कार्रवाइयों की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दक्षिणी लेबनान और गजा पट्टी पर जानवी शासन के पाशविक हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने जानवी शासन के हमलों को रोकवाने के लिए विश्व समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं की ओर से प्रभावी प्रतिक्रिया दिखाए जाने की मांग की है। समाचार एजेंसी फारस की रिपोर्ट के अनुसार जानवी शासन के युद्धक विमानों ने आज सुबह गजा पट्टी पर बमबारी की। इसी संबंध में जानवी शासन के सैनिक प्रवक्ता ने भी आज सुबह ऐलान किया है कि पिछले घंटों में दक्षिणी लेबनान में 3 और गजा पट्टी में 10 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानवियों द्वारा मस्जिद अक्सा का नादर जारी रहने और नमाजियों पर जानवी शासन के हमले को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों व कानूनों का उल्लंघन बताया है। नासिर कनानी ने इससे पहले भी जानवियों द्वारा मस्जिद अक्सा के अनादर की भर्त्सना की थी। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा आज आयतुल्ला सैयद अहमद खातमी की इमामत में अदा की गई। उन्होंने नमाज जुमा के खुतबों में ईरान और सऊदी अरब के संबंधों के फिर से बहाल होने की ओर संकेत करते हुए कहा, अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो तेहरान के खिलाफ अरब मोर्चा खोलेगा, परंतु आज इसका उल्टा हो गया। ईरान और सऊदी अरब के मध्य समझौता हो गया और दूसरे देश भी ईरान के साथ समझौता करने की प्रतीक्षा में हैं। तेहरान की नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा कि लैटिन अमेरिका अमेरिका का आंगन है और वहां जो भी सरकार जनता के मतों से आती है वो अमेरिका विरोधी होती है और ये इस बात का सूचक है कि वे जो चाहते थे उसे प्राप्त न कर सके। आयतुल्ला अहमद खातमी ने उन संकटों की ओर संकेत किया जिनका जानवी शासन को सामना है और कहा कि जानवी शासन में 2 ध्रुव अस्तित्व में आ गया है और जानवी शासन के नगरों में अपराधी शासकों के खिलाफ लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने आयरन डोम का निर्माण किया, उसके बावजूद सैकड़ों रॉकेट व प्रक्षेपास्त्र अवैध अतिरिक्त फिलिस्तीन में गिरे हैं और आयरन डोम इनमें से मात्र कुछ रॉकेटों व मिसाइलों को निष्क्रिय कर सका। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमन असदफी ने कहा है कि उनका देश चिंता के साथ मस्जिद अक्सा में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखे हुए है और हिंसा केवल हिंसा में वृद्धि का कारण बनेगी। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अल जजीरा के साथ साक्षात्कार में कहा कि जानवी शासन अपनी कार्रवाइयों से क्षेत्र को तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन चिंता के साथ मस्जिद अक्सा की घटनाओं पर नजर रखे हुए है और जानवी शासन ने इस पवित्र स्थल में नमाजियों पर जो हमला किया उसका कोई औचित्य नहीं है। फिलिस्तीन के जिहादी इस्लामी के नेता ने कहा है कि हम दुश्मन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जिहादी इस्लामी संगठन के महासचिव जियाद अन्नखला ने कहा है कि शत्रु की धमकी हमको डरा नहीं सकती, बल्कि ये तो हमारे बीच अधिक से अधिक एकता का कारण बनती है। उन्होंने अवैध जानवी शासन की ओर से गजा और लेबनान पर हमले की धमकी का उल्लेख करते हुए कहा, हम शत्रु के हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रूस का कहना है कि नेटो के अपनी सीमाओं के निकट होने का हम मुकाबला करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि नेटो लगातार रूस की सीमा के निकट होता जा रहा है, ऐसे में उसका मुकाबला किया जाएगा। दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को क्रेमलिन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस की सीमाओं की ओर नेटो का विस्तार मॉस्को की चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा के दृष्टि से समस्याओं का कारण बनेगा। प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टि से संतुलन बनाए रखने के लिए रूस सुरक्षा उपाय कर रहा है। और अंत में यह समाचार कि व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से अमेरिका की लज्जाजनक वापसी का जिम्मेदार ट्रंप प्रशासन को बताया है। व्हाइट हाउस ने अपने ताजा फैसले में बताया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की लज्जाजनक वापसी का जिम्मेदार ट्रंप प्रशासन है। जो बाइडेन की सरकार ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से संबंधित रिपोर्ट का संक्षिप्त भाग प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस लज्जाजनक वापसी का जिम्मेदार बताया गया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। क्या नाटो में यूक्रेन की सदस्यता का मामला पश्चिम के गले की हड्डी बन गया है? जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अमेरिका नाटो में यूक्रेन की सदस्यता के खिलाफ है और वो नाटो की आगामी बैठक में कुछ यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन की सदस्यता के बारे में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट ने यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के मतभेदों का रहस्य उद्घाटन किया है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाने और युद्ध में यूक्रेन की भरपूर सहायता को जारी रखने पर जोर तो दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का विरोध कर रहा है, जबकि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं और नाटो में उसकी सदस्यता के समर्थक हैं। अमेरिका को किसी भी तरह से यूक्रेन की सुरक्षा और उसके राष्ट्रीय हितों का समर्थक नहीं माना जा सकता। उसका सिर्फ एक मकसद है और वो रूस को कमजोर करना, जबकि यूरोपीय देश रूस के पड़ोसी हैं और जहां दोनों के कई साझा हित हैं, वहीं एक की सुरक्षा दूसरे के लिए भी काफी महत्व रखती है। अमेरिका इस युद्ध को रूस को कमजोर करने के अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन इसी के साथ वो रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव नहीं चाहता। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी है कि जुलाई शिखर सम्मेलन में वो उसी वक्त भाग लेंगे जब नाटो में क्योंकि सदस्यता के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आगामी नाटो शिखर सम्मेलन में इस पश्चिमी सैन्य संगठन में यूक्रेन के सदस्यता का विरोध, खास तौर पर अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों का विरोध इस संबंध में क्यूब सरकार से किए गए कई वादों के खिलाफ है। नाटो में यूक्रेन की सदस्यता का मुद्दा 2008 में अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों द्वारा उठाया गया था। 2008 में बुखाराफेस्ट शिखर सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों के प्रमुखों ने यूक्रेन और जॉर्जिया के इस संगठन में शामिल होने की बात कही थी, ताकि इस सैन्य संगठन का विस्तार रूस के करीब देशों और रूस की सीमाओं तक किया जा सके। उसी के बाद से ये मुद्दा रूस और पश्चिम के बीच तनाव का एक मुख्य बिंदु बन गया है। कहा जा रहा है कि ये मुद्दा यूक्रेन रूस युद्ध का एक मुख्य कारण है। रूस इस बात को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव का इस संदर्भ में कहना है कि कीव अच्छी तरह से समझता है कि नाटो में उसकी सदस्यता का परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में निकल सकता है। नाटो के सदस्य देश भी मानते हैं कि ये कदम एक तरह से आत्महत्या है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और अब रुख करते हैं भारत का। क्या भारत में हालिया हिंसा की घटनाएं मुसलमानों के जनसंहार का संकेत हैं? जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
पिछले दिनों भारत के कई इलाकों में रामनवमी और दूसरे हिंदू त्योहारों पर मुसलमानों के खिलाफ हुई सुनियोजित हिंसा पर कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे मुसलमानों के नरसंहार से जोड़कर देखा है। कई इस्लामी देशों, संगठनों, मानवाधिकार संस्थाओं और पत्रकारों ने बड़े पैमाने पर हिंदुत्ववादी शक्तियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। यहां तक कि इन देशों में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने भी भारत के खिलाफ प्रतिबंधों और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की भी मांग की है। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC ने भी भारत में मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। उसने मोदी सरकार से इस क्रम को तुरंत रोकने की मांग की है। 57 देशों के इस संगठन ने एक बयान जारी करके भारत में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। उसने कहा है कि बिहार शरीफ में मदरसे और लाइब्रेरी में आग लगाने की घटना से ये पता चलता है कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस हद तक फैल चुकी है। बयान में कहा गया है कि कट्टर हिंदुओं की भीड़ ने इस घटना को अंजाम दिया। बयान में हिंसा और भड़काने वाली कार्रवाइयों की आलोचना की गई और बताया गया कि ये भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का नतीजा है। OIC के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इस बयान को भारत विरोधी एजेंडा करार दिया है। हालांकि सिर्फ OIC ने ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी एक बयान जारी करके 30 और 31 मार्च को मुसलमानों के खिलाफ हुए व्यापक हिंसा की निंदा की है। HRW ने अपने बयान में कहा है कि भारत में सत्ताधारी BJP हिंदू त्योहारों का इस्तेमाल वोट जुटाने और बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है, जिससे हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों और हिंसक भीड़ को राजनीतिक संरक्षण का भरोसा होता है और इसमें शामिल लोग ये मानते हैं कि उन्हें इसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। HRW ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा है कि विपक्ष की सरकार वाले इस प्रदेश में अधिकारियों ने जब हिंसा में शामिल BJP के दर्जनों सदस्यों और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया तो वहां पार्टी ने पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगा दिया। वहीं कतर के पत्रकार अब्दुल्ला अल मादी ने ट्वीट पर OIC के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि इस तरह के आधिकारिक बयानों का कट्टर विचारधारा वाली दक्षिणपंथी मोदी सरकार पर कोई असर नहीं होगा। अगर वास्तव में कोई प्रभावी कदम उठाना है तो भारत के साथ व्यापार करना होगा और भारत में हिंदू कामगारों को नौकरियां नहीं देना है। उन्होंने लिखा है कि भारत में हिंदुओं के त्योहार अल्पसंख्यकों के लिए खतरे और परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी सरकार कश्मीरियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन रही है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली की मौजूदा प्रशासन जिस तरह से सरकार चला रही है वो इतिहास में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। श्रीनगर में एक बैठक के बाद نیشنل کانفرنس کے مہا سچیو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں پچھلے 4 ورشوں سے صرف اور صرف افسر شاہی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ان افسروں کو نیوکت کیا گیا ہے جو جموں کشمیر کے ڈیموگرافی سے بھی ناواقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، پرنتو ہماری بات نہیں مانی گئی، اور بندوق کے بل پر ہماری زبانوں کو بند رکھا گیا ہے، پرنتو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عارضی ہے اور کسی بھی سمے یہاں پر لاوا پھوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چناؤ کے بارے میں بھی نئی دہلی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ اس اوسر پر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
جو بھی یہاں آفیسر آئے ہیں اپنے لیفٹیننٹ گورنر سے لے کے باقی سینئر افسران، بیشتر جو ہیں سینئر افسران وہ باہر سے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے، ان کے لانے والا بھی اس کو بھی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کا جس کرسی پہ اس وقت بیٹھے ہیں۔
اس بیچ ایک بار پھر جمعہ دیوس کو ایتہاسک جامع مسجد کے امام مولانا سید محمد نقشبندی نے جموں کشمیر پرشاسن سے آہوان کیا ہے کہ جموں کشمیر کے میروائز مولی عمر فاروق جو اپنے نواس میں نظر بند ہے کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے پیوتر مہینے میں بھی ان کو اپنے گھر میں بند رکھا گیا ہے جو کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ راج نیتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دھارمک نیتا ہے اور تمام دھارمک گٹھوں کے وہ ادھیکش بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں آپسی بھائی چارے کو بنائے رکھنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور جو وہ یوگدان دے سکتے ہیں اور کوئی اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولانا نقشبندی نے لوگوں پر بل دیا کہ وہ شانتی کے ساتھ اپنی بات کہیں۔ اس بیچ متحدہ مجلس علماء نے بھی جموں کشمیر پرشاسن سے کہا ہے کہ رمضان کے پوتر مہینے میں مولوی عمر فاروق کی نظر بندی کو سماپت کیا جائے۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا سماپت ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔ شوتاؤ، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے pastoday.hir/hi۔ تو شوتاؤ، اب پرستوت ہے رمضان مہینے کے سمبندھ میں ہمارا وشیش کاریکرم۔
ایشوریے آتتھے،
دوستو پوتر رمضان مہینے پر وشیش کاریکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں۔ محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ دوستو کاریکرم شروع کرنے سے پہلے آئیے آج کے دن کی وشیش دعا اور اس کا انواد سنتے ہیں۔
اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآذنی فیہ رحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين۔
ہے میرے سوامی، آج کے دن مجھے بھرے لوگوں کی مترتا پراپت کرنے میں سفل کر، برے لوگوں کے ساتھ سے مجھے دور کر، اور اپنی دیا کے مادھیم سے مجھے سورگ میں جو شانتی کا ٹھکانہ ہے گھر پردان کر۔ تجھے تیرے پربھوت کی سوگند ہے برہمانڈ کے رچیتا۔ ایشور نے ہر پرانی کو اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے دی ہے۔ दुनिया में आने वाला हर प्राणी अपनी शक्ति, प्रतिभा और प्रवृत्ति के आधार पर अपना जीवन चलाना जानता है। प्राणी जानते हैं कि अपने जीवन रहने के मार्ग में अपनी प्रत्येक शक्ति का ठीक ठाक उपयोग कैसे करना चाहिए, घोंसला कैसे बनाएं, प्रजनन कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे पालें, दुश्मनों की पहुंच से कैसे दूर रहें या दुश्मन से लड़ने के लिए कैसे मुकाबला करें। ये सब दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सभी प्राणियों के पीछे एक शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत है। ईश्वर ने जीवों को अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं का उपयोग करना सिखाया है और इस तरह वो उन्हें अपने लक्ष्य और पूर्णता की ओर ले जाता है। यदि ये नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए नहीं होता तो जीव कभी भी अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाता। पवित्र कुरान सूरह ताहा की आयत नंबर 50 में कहता है, मूसा ने कहा कि हमारा ईश्वर वो है जिसने हर चीज को उसकी उचित सृष्टि प्रदान की और फिर मार्गदर्शन भी किया। जी हाँ, इस प्रकार का मार्गदर्शन केवल प्राणियों के भौतिक जीवन तक ही सीमित रहता है और उसका ही अवलोकन करता है। इंसान जैसा प्राणी जिसके पास एक भौतिक शरीर के अलावा एक आत्मा भी है जिसे पोषित किया जाना चाहिए और उस पर पहुंचना चाहिए जहां कोई फरिश्ता कभी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए निश्चित रूप से किसी अन्य प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस भौतिक दुनिया में कैसे खाना है और कैसे सोना है और कैसे रहना है, ये जानना मानवता के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानवता केवल सोना, खाना और जीवन का पालन करना नहीं है। मानवता सत्ता, धन और यश प्राप्त करना नहीं है। मानवता का अपना तरीका, प्रचलन और रिवाज है, एक ऐसा तरीका जिससे मनुष्य का निर्माता किसी और से बेहतर जानता है और उसने हमें नबियों के माध्यम से अपना तरीका और रीति बताई है। समझदार लोग रमजान महीने के शेष रह गए दिनों से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इंसान अपने पालनहार से हर वक्त बात कर सकता है, मगर इसके लिए रमजान महीने की बात ही कुछ और है। जो इंसान रमजान महीने की नियमतों से सही से लाभ उठाता है, वो उस इंसान की भांति होता है जो छोटे से पौधे की सिंचाई करता है और एक समय वो आता है जब वो बड़ा और मजबूत पेड़ हो जाता है, और अगर जानवर उसे नुकसान भी पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जो इंसान रमजान महीने की नियमतों से सही से लाभ उठाता है, वो आत्मिक दृष्टि से इतना मजबूत हो जाता है कि वो न केवल पाप नहीं करता है बल्कि पाप और पापी लोग भी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जो इंसान नया या साफ सुथरा वस्त्र धारण करता है, उसकी पूरी कोशिश यह होती है कि उसका वस्त्र गंदा न होने पाए। यही हाल उस इंसान का होता है जो रमजान महीने की नियमतों से लाभ उठाकर अपनी आत्मा को सद्गुणों के आभूषण से सजाता है, उसे गुनाहों से पाक करता है और उसमें सद्गुणों के बीज बोता है, और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसकी आत्मा दूषित हो। वो हर वक्त स्वयं को पापों की धूल से दूर रखने का प्रयास करता है। जी हाँ, मार्गदर्शन की नियमत ईश्वर की सबसे बड़ी नियमतों में से एक है जिसके लिए बहुत अधिक शुक्र और आभार की आवश्यकता है। ये नेमत स्वास्थ्य, आजीविका या सुरक्षा की नेमत से बहुत अधिक है, क्योंकि अन्य सभी नेमतें अस्थाई होती हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन मार्गदर्शन की नेमत एक महान नेमत है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति इस लोक और परलोक में दिव्य संतुष्टि और अच्छाई प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, एक अच्छाई जो कभी खोई नहीं जा सकती और हमेशा लोगों के साथ रहती है, इसी तरह एक महान नेमत के लिए बड़ी कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। एक कृतज्ञता जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इसलिए हम सभी एक साथ प्रार्थना के लिए आसमान की ओर हाथ उठाते हैं, और जैसा हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने हमें दुआए इफ्तिताह में भी सिखाया है कि सारी प्रशंसाएं उस ईश्वर के लिए हैं जिसने हमारा इस विलायत की ओर मार्गदर्शन किया, और उसने मार्गदर्शन और विलायत का चिराग हमारे लिए नहीं जलाया होता तो गुमराही के रास्ते पर भटकते रहते और कभी भी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते थे। मोमिन अपने समस्त कर्मों को अपने पालनहार के हवाले कर देता है, उसी पर भरोसा करता है, और उसे इस बात पर गूढ़ विश्वास होता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, अगर उसमें कोई शक्ति है तो उसका स्रोत महान ईश्वर है, यानी वो शक्ति महान ईश्वर ने ही उसे दी है। उसके अंदर किसी प्रकार की अपनी कोई शक्ति नहीं है, किसी भी शक्ति के अंदर स्वयं को पैदा करने की ताकत नहीं है। जो इंसान महान व सर्वसमर्थ ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो इस बात को भी जानता है कि उसका पालनहार उसके साथ है, वो एक क्षण के लिए भी उसकी असीम कृपा दृष्टि से ओझल नहीं है। जो इंसान अपने पालनहार को अपना मददगार समझता है, वो मुश्किलों और परेशानियों से कभी भी नहीं घबराता। यहाँ एक अन्य बिंदु का उल्लेख जरूरी है, और वो बिंदु यह है कि जो इंसान अपने पालनहार पर भरोसा करता है, उसका असली भरोसा महान ईश्वर पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी काम के लिए वेदित चीजें जरूरी हैं, पर उसका असली भरोसा वेदित चीजों के बजाय अपने पालनहार पर होता है। दोस्तों, ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से एक जिस नाम से हम उसे पुकारते हैं, रब है। रब का अर्थ है प्रशिक्षण देने वाला, और प्रशिक्षण का मतलब मार्गदर्शन है। ईश्वर ने इस मार्गदर्शन को अपने ऊपर जिम्मेदारी के रूप में जरूरी करार दे दिया है। ईश्वर सूरह लैल की आयत नंबर 12 में फरमाता है कि सृष्टि के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी मुझ पर है। ईश्वर ने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें अपनी उपासना के लिए बुलाने और उन्हें मानवता का मार्ग दिखाने और अपनी रीति रिवाज और संस्कारों का ज्ञान देने के लिए नबियों को चुना है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने के साथ पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया, और उनके बाद लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारियों के हाथों में था। पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारियों का अनुसरण और उनकी आज्ञा का पालन हम पर अनिवार्य है। ये उसी तरह है जैसे ईश्वर के पैगंबर की आज्ञा पालन और उनका अनुसरण है। जिस व्यक्ति का अनुसरण ईश्वर ने हमारे लिए अनिवार्य किया, वो कभी भी गुनाहकार या पापी नहीं हो सकता, क्योंकि इस हालत में ईश्वर हमें मार्गदर्शन नहीं करता। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी और इमाम एक और अपने काल में लोगों पर ईश्वर की निशानी, उसका तर्क और दलील होते थे, और उन पर लोगों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी हुआ करती थी। लेकिन इनमें से हर एक के काल में अत्याचारी शासकों और उनके जुल्म व सितम की वजह से और लोगों में धार्मिक चीज़ों को समझने में समझदारी की कमी की वजह से इमाम पूरी तरह से ईश्वरीय नियम लागू नहीं कर सके। पूरे इतिहास में विश्ववासियों को कभी शासकों के अत्याचार से डर लगता था तो कभी लोगों की अज्ञानता से। यह अज्ञानता और अत्याचार तब तक जारी रही जब तक ईश्वर ने अपनी अंतिम निशानी और अपने अंतिम तर्क को लोगों की नजरों से छिपा दिया और उस निशानी को अपनी दया व कृपा के साथ सुरक्षित रख लिया। ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों में धर्म के नियमों और आदेशों को समझने और उनका विश्लेषण करने और ईश्वरीय धर्म को लागू करने के लिए अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता नहीं आती है। उसके बाद ईश्वर अपनी अंतिम निशानी को दुनिया के सामने पेश करेगा और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में प्रकट होंगे तो वो दुनिया को न्याय और इंसाफ से भर देंगे, जबकि वो अत्याचार और जुल्म से भरी होगी। दोस्तों, यद्यपि इमाम अलैहिस्सलाम ईश्वर के आदेश पर लोगों की नज़रों से ओझल हैं, लेकिन वो हमेशा से ही लोगों के बीच में रहे हैं। हम में से हर एक को अलग अलग पहचानते हैं और हमारे कर्मों और कार्यों को देखते हैं। लोगों के बीच इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उपस्थिति का महत्वपूर्ण परिणाम मार्गदर्शन की अनुकंपा है। यही वजह है कि उनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि महदी है। यद्यपि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन ये विशेषता इमाम महदी के प्रकट होने से ज़्यादा विशेष है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस समय लोगों की नज़रों से ओझल हैं और वो पर्दे के पीछे से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। रिवायत में आया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मिसाल बादलों में छिपे सूरज से दी गई है, जैसा कि बादलों के पीछे छिपा सूरज लोगों को रोशनी पहुंचाता है, उसकी तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया की नज़रों से ओझल होने के बावजूद लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आपका मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
जी बिल्कुल दोस्तों, और आपकी दुआओं से हमारा कार्यक्रम जो है वो अच्छा चल रहा है और बहुत ही आपका जितना भी धन्यवाद करें उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके कि आप हमारा इतना साथ देते हैं, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं पूरी तरह। और जैसा कि हमेशा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी साइट parstoday.ir/hi इस पर जरूर विजिट किया कीजिए, इस पर आया कीजिए और हमारे साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाए रखें।
अरे, और इसी संबंध बनाने के सिलसिले में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो ईमेल है तो उसमें सबसे पहला ईमेल है आनंद मोहन बाइन जी का, और इन्होंने हमेशा की तरह रिपोर्ट भेजी है, रिसेप्शन रिपोर्ट भेजी है और रिसेप्शन ठीक सुनाई दे रहे हैं वहाँ पे। और ये छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश उड़ीसा से। तो लिखते हैं कि आज का पत्र संसार कार्यक्रम स्वाति और अहमद अब्बास से सुना। कार्यक्रम सभी श्रोताओं को पसंद आता है, आपका हर कार्यक्रम काफ़ी अच्छा होता है। हमारे एक श्रोता क्लब है जिसका नाम परिवार बंधु श्रोता संघ है, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान का एकमात्र रेडियो क्लब है जिसका वर्णन हर साल लंदन से छपने वाले पुस्तक वर्ल्ड रेडियो टीवी हैंडबुक में दिया जाता है। हमारा क्लब हमेशा सर्वे और प्रतियोगिता का आयोजन करता है, विजेताओं को आकर्षक इनाम दिया जाता है। कोई भी श्रोता मित्र मेरे फेसबुक पेज पर इसका पोस्ट देख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद मोहन बहन जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमें भी आमंत्रित कीजिए, हम भी आपके द्वार पर आए, और नहीं तो उस कहिए तो हम
उनके क्लब पे चले जाएं,
उनके क्लब में जाएं और बैठें, लोगों से भेंट करें, बात करें रेडियो के। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भारत जो है शीघ्र आने वाला हूं, तो मैं आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहा हूं।
जी, मोहम्मद खान यूपी बिहार से लिखते हैं, ईरान 1979 में आज़ाद हुआ, जिसकी आज़ादी के लिए हजारों शिया विद्वानों ने कुर्बानी दी है, भांति भांति प्रकार से यातनाएं झेली,
सर कटा दिए, तब कहीं जाकर ये देश अमरीकी आतंकवाद से आज़ाद हो पाया है। इसके पीछे आयतुल्ला खोमेनी की दशकों की मेहनत थी, जिन्होंने ईरान के हर उम्र और तबके के लोगों को एकजुट किया। इसके बाद से ईरान पाबंदियों का सामना कर रहा है। इन पाबंदियों की वजह से दौलत की कमी ज़रूर है, लेकिन इज्जत का तहफ़ हो रहा है। आज ईरान के नौजवान नशे से दूर हैं, महिलाओं को सम्मान प्राप्त है, हर मुश्किल को लोग खुशी खुशी झेल रहे हैं, वो अपने देश के नायकों की कुर्बानी की कद्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ नासमझ लोग दोबारा ऐसे ही हालत देखना चाहते हैं क्या?
ये मोहम्मद खान साहब, आपने बहुत ही इतने अच्छे अंदाज में लिखा है जैसे कि आप बहुत करीब से ईरान को देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ईरान में जो बदलाव आए हैं, जो क्रांति के पहले की स्थिति थी, जो आज की स्थिति है, वो ज़मीन आसमान का उसमें अंतर है। आज महिलाओं को जो सम्मान है ईरान के अंदर, जो सुरक्षा प्रदान है, वो दुनिया के बहुत ही कम ऐसे देश होंगे जहाँ पर इतनी सुरक्षा और इतनी स्वतंत्रता, इतनी आज़ादी के साथ महिलाएं अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी तरह लोगों में भी पूरी तरह से सुरक्षा का आभास रहता है, यानी लोग सुरक्षित हैं। जबकि आप अगर इसके ऊपर ध्यान दें कि ईरान के जो चारों तरफ जो देश हैं ज़्यादा अशांत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईरान पूरी तरह से शांत है, सुरक्षित है। और आपका ये संदेश हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा संदेश है। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी दीदी मरियम महलादी के पास, और वो फिर आज एक पिटारा लेके आई हैं संस्कृति से जुड़ी हुई खबरों का। आप देखते हैं कि घुमाती हैं, खिलाती हैं।
पिटारा तो वही है, पिटारा है।
अच्छा, पिटारा है, ठीक है।
उसमें से कुछ खबरें मिलती हैं तो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पिटारा जो है अब इनको बुरा लगने लगा है, तो इसका नाम आप लोग हमको बताइए।
बहुत ही अच्छा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम ऊद के बारे में, ऊद एक वाद्य यंत्र है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऊद एक पारंपरिक वीणा प्रकार का वाद्य यंत्र है जो ईरान और सीरिया में बजाया जाता है। संगीतकार छोटी गर्दन वाले वाद्य यंत्र को अपने पैर पर रखता है, एक हाथ से तारों को छेड़ता है और दूसरे हाथ से राग बजाता है। इन दोनों देशों में ऊद वाद्य यंत्र को अखरोट, चिनार, अबनूस या खुबानी की लकड़ी से बनाते हैं। ये वाद्य यंत्र नाशपाती के आकार का साउंड बॉक्स होता है। ऊद को बनाने में 25 दिनों तक का समय लगता है, जिसके दौरान लकड़ी को सूखने और सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर इसे बनाने के लिए 15 दिनों तक पानी और भाप से उपयोग किया जाता है। अलग अलग आकारों में ऊद तैयार किए जाते हैं और लकड़ी की नक्काशी और मोज़ेक पैटर्न से सजाए जाते हैं। आमतौर पर इसमें 5 जुड़वां तार होते हैं, हालांकि एक छठा तार भी जोड़ा जा सकता है। इसके बास और बैरिटोन रेंज के कारण ये यंत्र मेलोडिक और हार्मोनिक टोन उत्पन्न कर सकता है। ऊद को एकल या सामूहिक रूप से बजाया जाता है और कई तरह के आयोजनों में पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ होता है। इसका अभ्यास शागिर्दी के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में संगीत केंद्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रसारित होता है। शिल्पकार ज़्यादातर पुरुष होते हैं, हालांकि अभी जो है वर्षों में युवा महिलाओं ने भी इसमें रुचि विकसित की है।
देखिए, एक चीज़ तो ये बता दूँ कि आपने बहुत अच्छा किया जो दीदी बता दिया कि ऊद जो है वो
ऊद नहीं है। हाँ, जो भारत है। में होता है या
ईरान में भी जो है ऊद को, यानी अगरबत्ती को ऊद कहते हैं यहाँ पर, तो वो उसके उससे आप लोग जो है बिल्कुल वो ना कीजिएगा, इसलिए कि ये जो है वाद्य यंत्र है और वो जो अगरबत्ती है वो अलग चीज है और ये अलग, लेकिन दोनों का एक आत्मा को शांति पहुंचाने वाली दोनों चीजें हैं। ये जो है वो संगीत से जुड़ी हुई चीज है, वो खुशबू से जुड़ी हुई चीज़ है। जब दोनों एक जहाँ एकत्रित होती हैं तो एक नई चीज़ जो है वो वजूद में आती है, जिससे
मन को सुकून पहुंचाने
वाली, मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। जी श्रोताओं, चलते हैं फिर से दीदी मरियम मेहरदादी के पास और देखते हैं कि आज किन किन खबरों पर और आपने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, तो दीदी पढ़कर उसको बताएंगी।
जी, सुपरसोनिक मिसाइलों को विस्तृत किया जाएगा, दुश्मन केवल शक्ति की भाषा समझता है, जनरल सलामी। इस पर अहमद सरन लिखते हैं, अगर ईरान सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल विकसित कर लेता है तो दुश्मन अंधा और अक्षम हो सकता है। रूस और चीन के पास ऐसी तकनीक है जिसे ईरान भी बना सकता है। शक्ति के तर्क को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि अहंकारी शक्तियों से निपटने का एकमात्र तरीका बल की भाषा है, क्योंकि दुश्मन तर्क की शक्ति से अपरिचित है जबकि वो शक्ति के तर्क को स्वीकार करता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है, आज जो दुश्मनों की स्थिति है वो यही है कि वो किसी भी तरीके से वार्ता की मेज पर आना नहीं चाहते हैं, तार्किक बातें सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मजबूरन जो है वो जो दूसरे अन्य देश हैं उनको भी इस तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है दीदी, इस वक्त जो समय है वो समय की मांग ये है कि आप अपनी जो है रक्षा शक्ति को बढ़ाएं, ताकि जो इस तार्किक देश हैं जिनके पास जो केवल और केवल जो है वो युद्ध की भाषा समझते हैं, ताकत की भाषा समझते हैं, तो उनसे मुकाबले के लिए इस तरह के रास्ते को और इस तरह की प्रगति जरूरी है।
रूस ने पश्चिमी देशों पर लगाए गंभीर आरोप, G20 को अस्थिर करने की साजिश से उठाया पर्दा। इस पर सारा अली लिखती हैं, जीवन का जश्न मनाएं, पृथ्वी ऊर्जा से प्यार करती है और ब्रह्मांड में जीवन को नष्ट करने पर अटका हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने, और
डीप यानी अमीक बात कही है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, और क्योंकि इस समय जो है आप अगर
लड़ाइयां
हर तरफ जो है, युद्ध है, जंग है, हर देश जो है वो इसकी हथियारों की बात करता है, मानव रक्षा की बात, मानव सुधार की बात, मानव की प्रगति की बात, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों के स्वास्थ्य के लिए। आप अगर इधर यानी ध्यान दें तो बहुत कम देश हैं जो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं तो जिस बड़े बड़े जो आधुनिक देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको आप देखिए तो केवल मिसाइल की बात, हथियार की बात, टैंक की बात, तोप की बात,
बिल्कुल कोई प्रकृति की बात ही नहीं कर रहा है।
तो हम सबको ये दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि ये धरती जो है सुरक्षित रहे और पूरी मानवता जो है वो अमन और सुकून से रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुन रहे हैं, और एक बार फिर हम बताते चले कि हमारी साइट का एड्रेस है parstoday.ir/hi। इस पर जरूर विजिट कीजिए, आपको समाचारों के अतिरिक्त बहुत सारी जानकारियां इस पर उपलब्ध होंगी, मिलेंगी, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हमारे साथ संपर्क बनाने का भी एक आसान तरीका है। अब चलते हैं दीदी के पास और देखते हैं कि हमारे किस प्रिय श्रोता ने अपने विचारों को दीदी तक भेजा है।
जी, ये है लखनऊ से बी शर्मा, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
रेडियो तोहरान सुनने वाले सभी श्रोताओं का नमस्कार, और साथ में वहाँ के जितने उद्घोषक हैं, मरियम दीदी, अहमद अब्बास और स्वाति, आप सबों को भी मेरा प्रणाम। रेडियो तेहरान मेरा सबसे फेवरेट रेडियो है, जिसको हम हमेशा सुनते हैं, करीब करीब डेली हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि डेली अपना फीडबैक आप तक पहुँचाएँ। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, जिसमें ईरान, इस्लाम और सारी चीज़ों का विश्लेषण बहुत बखूबी किया जाता है। हमारे जो कार्यक्रम है जिसको हम पसंद करते हैं, उसमें आज की बात, अभी बहुत सारे नए कार्यक्रम भी चालू हुए हैं, वो सब भी अच्छे लगते हैं, कुरान स्क्वायर, ये चमत्कार, सांस्कृतिक समाचार, एक छोटा सा समाचार जो आप पत्र संसार में प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही विशेष होता है, उसमें ईरान के खूबियों के विषय में हम लोगों को जानकारी, दुनिया भर में जो ईरान की गतिविधियाँ होती है उसकी जानकारी आप देते हैं। सभी कार्यक्रम आपके शिक्षाप्रद होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं और बहुत ही सरल और सहज भाषा में होते हैं, जिसको हमको समझने में या फिर जानने में दिक्कत नहीं होती है। आप हमेशा निरपेक्ष होकर के अपने विचार को प्रकट करते हैं, जो आपकी विशेषता है, और हम अपने को सुनने से रोक नहीं पाते हैं। आपके जितने कार्यक्रम हैं हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें एक चीज़ और हमको साफ दिखाई देता है कि आप जो भी डाटा तैयार करते हैं वो बहुत प्रिसाइज होता है और उसको तैयार करने में आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता होगा, तभी इतना सुंदर और विस्तृत डाटा आप हम श्रोताओं के बीच प्रस्तुत करते हैं, जो जानकर हमें भी खुशी होती है कि हम इतना दूर रहते हुए ईरान के विषय में आपके माध्यम से बहुत कुछ जान रहे हैं जो शायद और दूसरे जगह अवेलेबल नहीं होता। और हर विषय पर, चाहे वो समसामयिक वार्ता हो या चाहे इतिहास हो चाहे प्रेजेंट हो, सारे चीज़ को आप कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपना प्रोग्राम आगे भी हम श्रोताओं को सुनाते रहेंगे। आपके जितने रेडियो सुनने वाले ईरान तेहरान और ईरान के जितने निवासी हैं, साथ में पार्स टुडे और रेडियो तेहरान के सभी श्रोताओं को भी अग्रिम धन्यवाद और बधाई। आशा है आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे, यही हमारी कामना है।
तो बी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीदी, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो श्रोताओं अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें यानी अपने भैया रवि जैदी को और अपनी दीदी मरियम महरदादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अपना मन पसंद कार्यक्रम पात्र संसार, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन ईरान की अपरिवर्तनीय नीति है। ईरान ने जानी शासन के हमलों की तीव्र निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसराइल क्षेत्र को तबाही की ओर ले जा रहा है, और उसने कहा है कि वो नाटो का मुकाबला करेगा। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा ये कार्यक्रम आप 60 में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुना। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुभरात्रि।